राधा की हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी थी, जो जंगल में शिकार करते हुए राजा विक्रम के कानों तक पहुंच गई थी। राधा को अंदाजा भी नहीं था कि वो अब कहाँ खसने वाली थी। राधा को हंसता हुआ देखकर मोहन ने सुकून की सांस ली थी। तब राधा ने मोहन से कहा, लेकिन तुम कुछ और भी तो कह सकते थे। मोहन बोला, ओह अच्छा, मैं कुछ और कहता और तुम्हारे पिताजी मुझे तुम्हारे अंगरक्षक की नौकरी से बाहर निकाल फेंकते। राधा ने उसकी बात सुनकर अपना सिर झुका लिया था। वो जानती थी मोहन जो भी कह रहा था वो सच था। तभी राधा ने मोहन से कहा, अच्छा अगर पिताजी तुम्हें निकाल देते तो तुम निकल जाते। ऐसा कहकर राधा और जंगल की ओर भागने लगी। और मोहन, अच्छा मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, ऐसा कहकर वो राधा के पीछे पीछे दौड़ने लगा। राधा मोहन को सताने के लिए एक झाड़ी में छिप गई थी और मोहन उसे चारों ओर खोजने लगा था। अपने लिए मोहन को इतना परेशान देखकर राधा को बहुत अच्छा लग रहा था। तारा परी और अमन उन दोनों को अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रहे थे। और फिर राधा के छिपे हुए काफी समय हो जाने पर वो वहां से निकली और वापस गांव की ओर आने लगी। राधा भागते हुए छिपते हुए कुछ ज्यादा ही घने गहरे जंगल में पहुंच चुकी थी। और जैसे राधा वापस आ रही थी, उसे एक तालाब दिखाई दिया जिसका साफ मोतियों के जैसा पानी बेहद आकर्षक लग रहा था। राधा खुद को रोक नहीं पाई और वो उस पानी के अंदर चली गई और पानी के साथ खेलने लगी। राधा के सारे कपड़े पूरी तरह से भीगकर उसके भीगे जिस्म पर चिपक गए थे। राधा ने एक छोटा सा काले रंग का ब्लाउज और हल्के पिंक कलर का लहंगा सा पहन रखा था। उस जमाने में लड़कियां घाघरे चोली में ही रहती थी। राधा के खूबसूरत लंबे घने बाल पानी में किसी नागिन की भांति तैर रहे थे। राधा उस समय कोई जीती जागती कयामत लग रही थी। अमन उस तालाब के किनारे बैठकर राधा को देखने लगा था और तभी उसकी नज़र तारा परी पर गई, जो उसे ही देख रही थी। तारा परी पर नज़र पड़ते ही अमन झेप कर उठ गया और दूसरी ओर देखने लगा। तारा परी को अच्छा नहीं लग रहा था कोई उसे देखे, जबकि वो नहीं राधा थी, लेकिन फिर भी थी तो वो तारा परी का ही एक और रूप। वही मोहन उसे चारों ओर देख रहा था और आवाज लगा रहा था, राधा राधा राधा। लेकिन राधा उस वक्त उस पानी में खेलने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे मोहन का ख्याल ही नहीं रहा था। अचानक पानी में खेलते हुए राधा को अपनी कमर पर दो हाथ महसूस हुए। राधा ने आनंद में अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, मोहन तुम आ गए। और राधा को अपने गोरे कंधों पर होंठों का स्पर्श महसूस हुआ और धीरे धीरे वो किस उसके कमर पर होने लगे थे। राधा धीमी धीमी सिस्कारी अपने मुंह से निकालने लगी और वो कहने लगी, बस करो मोहन अब नहीं। लेकिन किसका सिलसिला चलता रहा था और उस किस करने वाले ने उसकी पूरी कमर के एक एक जर्रे को जमकर चूसा था। राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी और जब उस किस करने वाले ने राधा के ब्लाउज के हुक खोले और पीछे से ही अपने हाथ उसकी चेस्ट पर ले आया और उन्हें प्रेस करने लगा और अपने होठों को उसने उसके कानों के करीब ले जाकर कहा, हाय कितनी खूबसूरत हो तुम, और फिर जमकर उसके गर्दन पर अपनी जेब फिराने लगा। जैसे ही उस किस करने वाले ने राधा के कान में ये बोला, तब राधा ने एक पल में अपनी आंखें खोल ली थी और उसने अपने एक हाथ से अपना ब्लाउज, जो कि उसने खोल दिया था, उसे संभाला और जल्दी से पीछे मुड़ी तो वो हैरान रह गई थी। वहां मोहन नहीं था बल्कि कोई और पुरुष था जिसे आज तक राधा ने देखा भी नहीं था। राधा का मन उसे देखते ही घृणा से भर गया था। उसने जल्दी से अपना ब्लाउज पहना और उस आदमी की ओर गहरी गहरी नजरों से देखने लगी। तब वो आदमी बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी ये जवानी हमें चाहिए, तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म हमें चाहिए। ऐसा कहकर उसने राधा को कसकर उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और एक बार फिर उसकी गर्दन और चेस्ट पर किस करने लगा। राधा ने जोर लगाकर उसे खुद से दूर कर दिया और उस आदमी के सामने उसे तलवार दिखाई दी। राधा ने बड़ी ही फुर्ती से उस तलवार को उठा लिया और उस आदमी के सीने पर रख दिया और बोली, तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई राधा को हाथ भी लगाने की। राधा सिर्फ मोहन की है, अगर तू आज के बाद मुझे फिर से नजर आया तो तेरी इसी तलवार से तेरे इतने टुकड़े करूंगी कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। ऐसा कहकर राधा जल्दी से उस पानी से निकली और अपने गांव की ओर भागने लगी। उस आदमी ने उसका पीछा करना जरूरी भी नहीं समझा था और वो आराम से पानी से बाहर निकलती हुई राधा की कमर और कमर का निचला हिस्सा देखने लगा था। वो उसे तब तक देखता रहा था जब तक कि राधा उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रम सिंह था, जो राधा के हंसने की आवाज सुनकर वहां आ पहुंचा था। और जब उसने राधा को पानी में नहाते हुए देखा तो वो अपनी सुध-बुध खो बैठा था और वो कितनी देर तक अपनी आंखों से उसके जिस्म के हर हिस्से को निहारने लगा था। और फिर जब वो खुद को रोक नहीं पाया तब वो उस तालाब के अंदर चला गया था और उसने राधा की कमर पर किस करने शुरू कर दिए थे। राजा विक्रम राधा को जाते हुए देखता रहा और बोला, आज के बाद तुम सिर्फ मेरी होगी, हर रात हर दिन के लिए। अब राजा विक्रम सिंह को सिर्फ और सिर्फ राधा चाहिए। ऐसा कहकर वो एक शैतानी हंसी हंसने लगा। तारा परी और अमन सब कुछ बेहद आश्चर्यचकित होकर देख और सुन रहे थे। तभी उन दोनों ने खुद को मोहन के पास पाया, जो राधा को ढूंढ ढूंढ कर थक गया था और तभी उसे एक ओर दूर से राधा दिखाई दी थी जो उसी ओर भागती चली आ रही थी। मोहन भी जल्दी से उस ओर भागा था और जल्दी ही राधा उसके एकदम करीब आ गई थी और मोहन को देखते ही राधा ने उसे भावावेश में गले लगा लिया था। तब मोहन राधा को देखकर बोला, इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें? तब राधा ने मोहन को बता दिया था कि जंगल में उसे एक आदमी मिला था और वो उसके साथ कुछ करना चाहता था। राधा की बात सुनकर मोहन का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और वो गुस्से से भरकर बोला, कौन है वो? मैं अभी उसके टुकड़े टुकड़े करके इस जंगल में फेंक दूंगा। मोहन जाने ही वाला था लेकिन राधा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया था। रहने दो मोहन, मैंने अच्छे से समझा दिया है उसको, वो अब किसी भी तरह की जरूरत या हिम्मत नहीं करेगा। तुम चलो यहाँ से, हमें घर पहुँचना होगा, अगर और देर हुई तो न जाने पिताजी क्या करेंगे। मोहन उस वक्त राधा की बात सुनकर रुक गया था और राधा का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगा था। तारा परी जो उन दोनों को जाते हुए देख रही थी, न जाने क्यों उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी अमन और तारा परी ने खुद को राधा के घर पर पाया था जहाँ पर ढेर सारे सिपाही आए हुए थे, अपने अपने हाथों में सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात की अलग अलग थाल लेकर। ये देखकर तारा परी और अमन चौंक गए थे और तभी तारा ने अपने आप को राधा के कमरे में पाया जो अपनी माँ के गले से लगकर रो रही थी। उसकी माँ यानी वही बूढ़ी माँ जो तिलस्मी रोटी पकाती थी, वो राधा को समझाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी। तभी मोहन तपस्वी महाराज के साथ राधा के कमरे में आ गया था। मोहन की आंखें एकदम लाल सुर्ख थीं। तब तपस्वी महाराज ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और बोले थे, मेरी बेटी तुझे कितना समझाया था मैंने, अब देखा तूने, पड़ गई उस जालिम राजा की तुझ पर नजर और देख तेरे बदले उस जालिम ने हमें क्या भेजा है। ऐसा कहकर वो तपस्वी जी रोने लगे थे।
तारा परी और अमन बेबस आंखों से उन लोगों को देख रहे थे कि तभी एक सिपाही अंदर आया जो शायद उस राजा का मंत्री था। उसने कहा, खुशनसीब हो तुम तपस्वी जो हमारे राजा श्री विक्रम सिंह तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, वरना तो तुम जानते ही हो जो औरत राजा को पसंद आ जाती है वो उसी वक्त उस राजा की हो जाती है। लेकिन तेरे बदले तुम्हें ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात दे रहे हैं हमारे राजा विक्रम सिंह। अब जल्दी करो, राजा का हुक्म है कल के कल ही उनकी शादी राधा से होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरे साथ साथ तेरा पूरा गाँव राजा का प्रकोप देखेगा। उस सिपाही की बात सुनकर अब मोहन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसने उसी पल उस राजा के आदमी का गला पकड़ लिया और गुस्से से दहाड़ा था, जा और जाकर कह दे अपने उस राजा से, राधा सिर्फ मोहन की है। ऐसा कहकर उसने उस मंत्री को दे मारा था और वो मंत्री मोहन की मजबूत पकड़ के आगे अपने आप को एकदम बेसहारा और लाचार महसूस कर रहा था। तभी तपस्वी महाराज मोहन की बातें सुनकर आगे आए और बोले, क्या कहा तुमने, राधा सिर्फ मोहन की है? तब मोहन हाथ बांधकर उस तपस्वी के सामने खड़ा हो गया और बोला, हाँ तपस्वी महाराज, मैं और राधा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन आज तक ये बात आपको बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर अब भी मैं चुप रहा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तब तपस्वी महाराज एक नज़र राधा को देखते तो एक नज़र मोहन को, उसके बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने मोहन को गले लगा लिया और बोले, हम आज ही तुम दोनों की शादी कराएंगे, इससे पहले कि उस दुष्ट राजा की बुरी नज़र एक बार फिर मेरी बेटी पर पड़े, शादी की तैयारी करो। राधा और मोहन दोनों ये सुनकर मुस्करा दिए थे और बूढ़ी माँ जो अब राधा की एक जवान माँ थी, उसने उन दोनों को उस कमरे में अकेला छोड़ दिया और शादी की तैयारी करने के लिए चली गई थी। मोहन ने राधा को जल्दी से गले लगा लिया और बोला, जब तक मोहन के जिस्म में जान है तब तक राधा को मोहन से कोई जुदा नहीं कर सकता है,